साहित्य के माध्यम से धार्मिक संबंध। मध्यकाल की भक्ति साधना साहित्य के माध्यम से प्रकट हुई है। रसपरक साहित्य का इस प्रकार भक्ति साहित्य के साथ एक ही भाव दुनिया भर के साहित्य में विरल है। देश के विभिन्न भागों में इस भक्ति साहित्य ने मध्यकाल में अद्भुत एकता स्थापित की थी। साहित्य के माध्यम से स्थापित संबंध बहुत दृढ़ होता है। इस समय ऐसा संबंध और भी आवश्यक हो गया है, क्योंकि परिस्थितियां कुछ विषम हो आई हैं। यह आशंका होने लगी है कि विभिन्न प्रांत में शताब्दियों से बना हुआ संबंध टूट तो नहीं जाएगा। वस्तुतः यह संबंध इतना दृढ़ और गंभीर है कि उसका टूटना असंभव है। प्रेम का बंधन ढीला पर भर पड़ सकता है, परंतु वह ढीला भी क्यों पड़े। साहित्य के माध्यम से जो संबंध स्थापित होता है उसमें थोड़ी देर जरूर लगती है, पर वह टिकाऊ और यथार्थ होता है। भारतवर्ष का दीर्घकालीन इतिहास इस बात का साक्षी है कि प्रांतों के राजनीतिक संबंध बनते और बिगड़ते रहे हैं, परंतु सबको एक ही विचारधारा ने दृढ़ता के साथ बांध रखा है। अगर बहुत पुराने जमाने की बात छोड़ दें और उत्तरकालिक मध्यकाल की ही बात लें, जिसमें भिन्न भिन्न प्रांत की भाषाओं का स्वतंत्र विकास होता रहा है, तो हमें साहित्यिक संबंध का आश्चर्यजनक संवाद प्राप्त होगा। मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत उनकी मृत्यु के 100 वर्ष के भीतर ही एक बंगाली कवि द्वारा बंगाल से अनुवादित हो गया था। तुलसीदास पर भाषा में काव्य लिखने के लिए जब काशी के पंडितों का आक्रमण हो रहा था, तो सुप्रसिद्ध वैदांतिक आचार्य मधुसूदन ने ही उनका पक्ष ग्रहण करके वह प्रसिद्ध श्लोक लिखा था, जो तुलसीदास के व्यक्तित्व की उत्तम व्याख्या है। अनकानने हास में न तुलसी जंगमस्तरु कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता। ये मधुसूदन सरस्वती बंगाली पंडित बताए जाते हैं। मैंने स्वयं बंगाल के कीर्तनों में तुलसीदास और सूरदास के पद गाए जाते हैं। नाभादास जी के भक्तमाल का बंगला में जो अनुवाद हुआ है वह केवल अनुवाद ही नहीं है, उसका परिवर्धन भी है। इस भक्त माल बंगला संस्करण में सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास आदि भक्तों की कथाएं दी हुई हैं, जिनको आश्रय करके इस काल के सर्वश्रेष्ठ कवि रविंद्रनाथ ने इन हिंदी कवियों पर प्रथम श्रेणी की कविताएं लिखी हैं। बंगला भक्तमान के आधार पर कविवर रविंद्रनाथ ने सूरदासेर प्रार्थना नामक एक अत्यंत सुंदर कविता लिखी है। इसमें एक युग के महाकवि ने दूसरे युग के महाकवि को कल्पना की आंखों से जिस रूप में देखा है, वह रूप कमाल की मोहकता के लिए है। साहित्य के माध्यम से आज भी हम प्रांतों में संबंध स्थापित करें, यह हमारी दीर्घकालीन परंपरा के अनुकूल है। इस प्रकार के प्रयत्न से जो शुभ परिणाम होता है, वह प्रयोग की अवस्था में नहीं बल्कि पूर्ण रूप में परिष्ठित है। आज से 100-150 वर्ष पहले तक भिन्न भिन्न प्रांत इतने अधिक अंत संबद्ध थे कि एक का साहित्य धर्म और तत्ववाद दूसरे के उन्हीं विषयों की जानकारी प्राप्त किए बिना समझे ही नहीं जा सकते। सूरदास को अच्छी तरह समझने के लिए यदि हम संपूर्णतः सूरदास के साहित्य तक या कुछ और अधिक पढ़कर ब्रज भाषा के साहित्य तक ही सीमा बांध कर बैठे रहे तो उस महान रस समुद्र का केवल एक ही पहलू देख सकेंगे, जिसे उत्तर मध्यकाल के भक्त कवियों ने अमर वाणी रूप निर्झरिणियों से भर दिया है। सूरदास को समझने के लिए विद्यापति, चंडीदास और नरसिंह मेहता परम आवश्यक है। यदि हम सचमुच सूरदास को समझना चाहते हैं, तो चंडीदास और विद्यापति या अन्य वैष्णव कवियों को समझें, क्योंकि उन्हें समझे बिना हम बहुत घाटे में रहेंगे। वस्तुतः इस कोने से उस कोने तक फैले हुए विविध प्रकार के सामाजिक रीति रस्म पूजा उपासना, व्रत उपवास, शास्त्रीय मान्यता आदि बातें जिस प्रकार जनसमूह के अध्ययन के लिए नितांत आवश्यक उपादान है, उसी प्रकार और उन सब में अधिक आवश्यक वस्तु है तत्कालीन साहित्य। इस साहित्य के माध्यम से यदि हम अध्ययन शुरू करें तो ऐसा लगेगा कि समूचा भारतवर्ष नाना भांति के साधनाओं, विश्वासों और अंतर संबंध विचारों के सूत्र से कसकर सीसा दिया गया है। इस सूत्र का एक टाँका यदि बंगाल में है तो दूसरा पंजाब में, तीसरा मारवाड़ में और आश्चर्य नहीं कि चौथा मलावार में निकल आए। भारतवर्ष का मध्यकालीन साहित्य वस्तुतः समूचे भारतवर्ष का एक ही साहित्य है, प्रांतवार बटा हुआ विभिन्न बोलियों का नहीं। मध्यकाल के भक्त कवियों को समझने के लिए हमें थोड़ा वर्तमान काल से निकलना पड़ेगा। उदाहरणार्थ सूरदास शताब्दियों से हिंदी भाषी जनता के हृदय हार बने हुए हैं, इसलिए नए सिरे से यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि वे हिंदी के श्रेष्ठ कवि हैं, किंतु कुछ बातें नए सिरे से कहने की हैं। हम जिस वातावरण में शिक्षित हुए हैं उसकी एक विशेषता है कि उसने हमारी समस्त प्राचीन अनुश्रुतिक धारणाओं से हमें लगभग विच्छिन्न कर दिया है। यदि हम संपूर्ण रूप से विच्छिन्न भी हो गए हैं तो हम आधुनिक ढंग से सोचने की अनाविल दृष्टि पा सकते, परंतु हम पूर्ण रूप से अनुश्रुतियों से विच्छिन्न भी नहीं हुए हैं और उन्हें जानते भी नहीं हैं। नतीजा यह हुआ कि श्री कृष्ण का नाम लेते ही हम पूर्णानंद घन विग्रह परम पुरुष की सोचे बिना नहीं रहते, और फिर भी गोपियों के साथ उनकी रासलीला की बात समझ नहीं सकते। अर्थात श्री कृष्ण को तो हम परम देवता का रूप मान लेते हैं, पर आगे चलकर सारी कथा को तदनुरूप नहीं समझ पाते। इस अधकचरी दृष्टि का परिणाम यह हुआ है कि हम वैष्णव कवि की कविता को न तो उसके तत्ववाद निरपेक्ष रूप में देख पाते हैं और न तत्ववाद सापेक्ष रूप में। हम झट कह उठते हैं कि भगवान के नाम पर क्या उलूल जुलूल बातें हैं। यदि सूरदास के श्री कृष्ण और राधा कालिदास के दुष्यंत और शकुंतला की बातें प्राकृत प्रेमी और प्रेमिका होते तो बात हमारे लिए सहज हो जाती, पर न तो वे प्राकृत ही हैं और न हमें उनके अप्राकृत स्वरूप की वास्तविक धारणा ही है। इसलिए हम न तो वैष्णव कवियों की कविताओं को विशुद्ध काव्य की कसौटी पर ही कर सकते हैं और न विशुद्ध भक्ति की दृष्टि से अपना ही सकते हैं। हम सूरदास को भक्ति शिरोमणि कहते हैं और दूसरे ही क्षण अफसोस के साथ कह उठते हैं कि उनके काव्य में वह प्रबंधगत वैशिष्ट्य नहीं है जो जीवन के प्रत्येक पहलू का आदर्श स्थापित करे। फिर आनंद गदगद होकर कह उठते हैं, श्री कृष्ण का बाल रूप वर्णन करने में सूरदास ने कमाल की स्वाभाविकता ला दी है। यह सब क्या है, हमारे दृष्टि की अनाविलता नहीं सूचित करते? हम मध्यकाल के भक्त कवि को गलत किनारे से देखना शुरू करते हैं और आधा सुधा जो कुछ हाथ लगता है उसी से तो झुंझला उठते हैं या गदगद हो उठते हैं। मुझे इस बात की शिकायत नहीं है कि लोग खिन्न होते हैं या गदगद होते हैं, बल्कि इस बात की शिकायत है कि गलत समझकर वैसा होते हैं। पूछा जा सकता है कि सही दृष्टिकोण क्या है और वह सही है इसका प्रमाण क्या है। दोनों ही प्रश्नों का उत्तर मैं देने जा रहा हूँ, पर ये उत्तर मेरी सीमित बुद्धि के हैं और मेरा यह दावा है कि यही एकमात्र उत्तर है, लेकिन आगे की बातों से इतना मालूम हो ही जाएगा कि मैं ठीक रास्ते से ही सोच रहा हूँ। इन भक्त कवियों ने अपने विषय में बहुत कम लिखा है। अनुश्रुति उनके नाम के साथ बहुत प्रकार के सिद्धियों और करामातों को जोड़ती है। सिद्धियों का युग अभी भी चल रहा था। भक्ति काल में उसमें केवल इतना अंतर आ गया था कि भक्त के लिए भगवान सब प्रकार की करामातों की योजना करते हैं। इन करामाती कहानियों से भक्ति के विषय में बहुत अच्छी जानकारी नहीं होती है, परंतु फिर भी सभी कहानियाँ विचित्र रूप से तत्काल प्रचलित विचारों और व्यवहारों का अच्छा परिचय देती हैं। सूरदास की ही बात ली जाए, इन्होंने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा। अनुश्रुति के अनुसार सारस्वत ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए थे। अपने इर्द गिर्द जिस समाज को उन्होंने देखा था उसका कोई उच्च आदर्श नहीं था। लोग खाते पीते थे, रोगी या निरोग होते थे और चार दिन तक हंस या रो कर चल बसते थे। युवावस्था विलास का काल माना जाता था। सारा समाज यौवन मद, जन मद, धन मद और मादक मद का शिकार था। क्या पुरुष क्या स्त्री, सबका लक्ष्य भोग लिप्सा ही था। जो लोग धार्मिक प्रकृति के होते थे वे पुराण सुन लेते थे, तुलसी दल का भोग लगा देते थे और शालिग्राम शिला की पूजा भी कर लेते थे। जो लोग मंगल कामी थे वे एकादशी द्वादशी का संयम व्रत पाल लेते थे और नाना ग्रहों की शांति स्वयं करके अमंगल शमन कर लेते थे। सूरदास ने इसी प्रकार का समाज देखा था। लोगों में झूठी शान, थोथी मान प्रियता और उद्देश्यहीन धर्माचार का बोलबाला था। भावुक सूरदास इस अवस्था से विरक्ति अनुभव कर रहे थे और न जाने किस शुभ मुहूर्त में सब कुछ छोड़ छाड़ विरक्त हो गए। उस समय उनकी अवस्था तरुण रही होगी और यदि अनुश्रुतियों को प्रामाणिक माना जाए तो यह भी जान पड़ता है कि उनके अंग अंग से लावण्य की प्रभा छिटकती रही थी। वह कहानी अति प्रसिद्ध है जिसमें कहा गया है कि किस प्रकार किसी तरुणी के रूप से आकृष्ट होकर उन्होंने उसका अनुसरण किया, बाद में अपनी आंखें फोड़ या फड़वा ली। सूर होने के बाद वे दीर्घ काल तक भगवान को कातर भाव से पुकारते रहे। उस समय के उनके भजनों में दैन्य और आत्मसमर्पण का बड़ा जोर था। सूरदास के विषय में किंवदंतियां तो बहुत हैं, परंतु प्रामाणिक रूप में इतना ही मालूम होता है कि वे पहले गऊ घाट में रहते थे और बहुत से चेले बनाए थे। भक्त तो वो पहले से ही थे, पर शुरू शुरू में दास्य भाव की ओर ही झुके हुए थे। संभवतः उनकी अवस्था जब काफी परिपक्व हो आई थी, उसी समय एक बार महाप्रभु वल्लभाचार्य उधर पधारे। श्री गोकुलनाथ जी की 84 वैष्णवों की वार्ता के अनुसार सूरदास जी जब महाप्रभु से मिलने गए, उस समय वे ठाकुर जी को भोग समर्पण करके और स्वयं भी प्रसाद पाके गादी पर विराजमान हो रहे थे। सूरदास को देखकर उन्होंने कुछ भगवत भजन करने का आदेश दिया। सूरदास जी ने आज्ञा शिरोधार्य की और मुक्त कंठ से वे गान छेड़ दिए, जिनमें अपनी तामसिकता और पाप परायणता के लिए पश्चाताप था। अपने को पापियों का शिरोमणि बताया गया था और भगवान को इस बात के लिए ललकारा गया था कि यदि सचमुच पतितोद्धारक हो तो मुझे उबारने में अपना जोर आजमा देखो। महाप्रभु ने दो ही भजन सुने और फिर डांट कर कहा, सूर है के ऐसो घिघियार काहे को है, कुछ भगवत लीला वर्णन करो। सूरदास हैरान, आज तक यह बात तो और किसी ने नहीं कही। भगवत लीला क्या वस्तु है गुरु, मैं तो उसे नहीं जानता। कहते हैं इस प्रसंग के बाद ही महाप्रभु ने उन्हें लीला वर्णन की वह विधि सिखाई जो सूरदास के परवर्ती जीवन की एकमात्र ध्रुव तारा सिद्ध हुई। कहते हैं इस घटना के बाद से सूरदास ने अपने भजन का रास्ता ही बदल दिया। उन्होंने लीला विषय पदों की रचना की। यहाँ आकर भक्ति ने साहित्य को इस दृढ़ता के साथ पकड़ा कि पूर्ववर्ती काल में इस कोटि की रचना का कोई उदाहरण खोज लेना कठिन हो गया। भगवान की बाल कैशोर और यौवन लीलाओं का उन्होंने जमकर वर्णन किया। साहित्य साधना के माध्यम से भक्ति की साधना प्रकट हुई। उस साहित्य में विनय नहीं है, भक्त की कातर पुकार नहीं है, सूर की खिघियाट नहीं है। यदि तथा आदि से अंत तक भगवान की रसमयी लीलाओं का विस्तार है। यह सारा प्रयत्न लीला गान का प्रयत्न है। उसका हेतु भी लीला ही है, उद्देश्य भी लीला ही है, प्रयोजन भी लीला ही है। मध्यकाल में ऐसे अनेक भक्त कवि हैं जिनके साथ कुछ इसी ढंग की कहानियां जुड़ी हुई हैं। इन कहानियों से इन साधकों का विशेष दृष्टिकोण स्पष्ट हुआ है, परंतु सभी साधकों का एक ही लक्ष्य रहा है, लीला गान।